आकांक्षा बिल्कुल सिद्धार्थ के पास बैठी थी। वो एक पल के लिए भी सिद्धार्थ को खुद से दूर नहीं होने देना चाहती थी। और तभी रणविजय ने अपना गला थोड़ा सा ठीक करते हुए दादी को देखकर कहा था, दादी मेरी कोई गलती नहीं है। मैं नहीं जानता कि उस लड़की ने कैसे सारा सच पता लगाया, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ बढ़ा चढ़ा कर ही सबके सामने पेश किया है। उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को अच्छी तरह से समझेंगे और मुझे गलत नहीं समझेंगे। तभी आकांक्षा रणविजय की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ दादी, रणविजय जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें नीचा दिखाने के लिए वो झलक किसी भी घटिया इंसान से हाथ मिला सकती है, साथ ही साथ मल्होत्रा परिवार को भी इस्तेमाल कर सकती है सिर्फ और सिर्फ हमें बदनाम करने के लिए। हम लोग ही थे जो जानते हैं कि उस वक्त उसे मेरी मम्मा नैना ने कहीं नहीं फेंका था, बल्कि उसे किसी और को पालने के लिए दे दिया था। लेकिन हमें क्या पता था कि मेरी मम्मा की गई एक भूल इस तरीके से हमारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। और आपको तो पता ही है कि वो लड़की मिस्टर सिद्धार्थ खुराना से किस कदर ऑब्सेस थी, और जब उसे ये पता चला कि मेरी सगाई मिस्टर खुराना से हो चुकी है, तभी वो मिस्टर खुराना के साथ इंटीमेट हुई। ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया। मैं यहाँ सिद्धार्थ की कोई गलती नहीं मान रही हूँ। मुझे पता था कि उसके जैसी लड़कियाँ किसी भी हद तक जा सकती हैं, और सिर्फ मुझसे सिद्धार्थ खुराना को छीनने के लिए उसने तरह तरह के षड्यंत्र रचे हैं। अब जैसे ही सिद्धार्थ ने उसके मुंह से इस तरीके की बातें सुनी और आकांक्षा के मुंह से ये सुना कि झलक अभी भी उसके पीछे जुनूनी रूप से पागल है, कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। साथ ये सुनकर उसे एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन और सुकून मिल रहा था कि झलक मुझे लेकर पोजेसिव है, वो मुझे लेकर ऑब्सेस्ड है। सिद्धार्थ बार बार मन ही मन ये बात दोहरा रहा था। फिलहाल दादी अभी भी आकांक्षा को कोई खास भाव नहीं दे पा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से पूरे समाज के सामने आकांक्षा और उसके परिवार की धज्जियां उड़ चुकी थीं, तो उन्हें एक अलग ही तरह की शर्म महसूस हो रही थी। लेकिन उन्हें लग रहा था कि शायद सिद्धार्थ जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर सिद्धार्थ ने इन्वेस्टिगेशन करवाई है तो सारी बातों का अच्छी तरह से पता भी लगा लिया होगा। और वैसे भी नैना ने इस बात से इनकार नहीं किया था कि मल्होत्रा परिवार से उसका कोई रिश्ता या लेना देना नहीं था, और उस वक्त आरव ने नैना के साथ बदतमीजी की होगी। समाज के डर से उन्होंने ये बात किसी को पता नहीं लगने दी और चोरी छिपे ही आरव को पुलिस से पकड़वा दिया था। लेकिन जिस तरीके से झलक ने सबके सामने इस बात का भी तमाशा बना दिया, तो इसका मतलब साफ था कि वो लड़की जरूर कोई षड्यंत्र रच रही थी और सिद्धार्थ को पाने के लिए ही ये सब कुछ कर रही थी। आकांक्षा की बातें सुनकर सिद्धार्थ गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला था, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। ये बात सच है कि कुछ पल के लिए मैं बहक गया था और उसकी बातों में भी आ गया था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। वो लड़की अब कभी भी मेरी जिंदगी में नहीं आ पाएगी। तभी डॉक्टर वहां आए और सिद्धार्थ को देखकर बोले थे, सर मैडम की तबीयत काफी हद तक बेहतर है और अगर सब ठीक रहा तो शाम मिसेस खुराना को डिस्चार्ज कर देंगे। ये सुनकर कहीं ना कहीं आकांक्षा जल्दी से खुश हो गई और दादी की बीमारी व सेहत का झूठा दिखावा करते हुए बोली थी, दादी आपकी हालत देखकर सच में मैं तो कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही थी, मैं बिल्कुल पत्थर जैसी बन गई थी। थैंक गॉड दादी अब आप बिल्कुल ठीक हैं। वहीं उर्वशी जी कमजोर सी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार कुछ तो ऐसा था जो उसे पूरी तरह से रोक रहा था। तभी सिद्धार्थ दादी को देखकर बोल पड़ा, जल्दी से घर चलिए, इसी वीक मेरी और आकांक्षा की शादी हो जाएगी। आपकी सेहत ठीक होते ही हम शादी कर लेंगे और कल से ही हल्दी के फंक्शन शुरू करवाइए, क्योंकि सिद्धार्थ खुराना चाहता है कि हल्दी मेहंदी और संगीत के सारे फंक्शन धूमधाम से हों। अब ये सुनकर तो आकांक्षा खुशी से झूम उठी और तुरंत सिद्धार्थ के गले लग गई। कम से कम इस तरह से वो उस छलक को जवाब दे सकती थी। वहीं दादी बोली थी, हमें पूरी उम्मीद है कि वो लड़की अब तुम्हें पाने के बेकार के ख्वाब पूरी तरह से छोड़ देगी। वहीं इस वक्त दादी की बात सुनकर रणविजय तुरंत दादी को देखकर बोला, दादी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन उस लड़की ने सारी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है, अब आपको मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। तभी सिद्धार्थ ज्यादा कुछ कहे बिना खड़ा हुआ और रणविजय के कंधे पर हाथ रखकर बोला था, उस लड़की की बातों से साफ साफ यह कोशिश की गई है कि हम दोनों भाइयों में दरार आ जाए, दूरियां आ जाएं, और शायद इसीलिए उसने सबके सामने इस तरह की बातें की हैं, लेकिन उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाएगी। ये बोलकर सिद्धार्थ ने रणविजय को गले से लगा लिया था। अब तो रणविजय को भी लगने लगा था कि शायद सिद्धार्थ उसे माफ कर देगा। कहीं ना कहीं दोनों को अच्छा ही हुआ था, कम से कम इस इंसिडेंट के बहाने दोनों भाई तो आपस में मिल गए थे, वरना दादी के तो बाल पूरे तरीके से सफेद हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो इन दोनों को एक नहीं कर पाई थी। फिलहाल वहीं रणविजय सतही लाल आंखों से अभी भी आकांक्षा को देख रहा था, मानो अपनी आंखों ही आंखों में उससे कहना चाह रहा हो कि तुमने सबके सामने मेरी साइड लेकर अपनी वफादारी का सबूत दिया है और रणविजय इसका इनाम तुम्हें जरूर देगा। फिलहाल वहीं दूसरी ओर दादाजी सब लोगों के साथ बैठे हुए थे। अनामिका और झलक जाकर दादाजी के दाएं बाएं बैठ गए। दादाजी ने बच्चों को देखकर कहा,
बच्चों, हम जानते हैं कि आप लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हैं। वैसे भी हम यहाँ अभी कुछ दिन और रुक रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सब जहाँ भी जाएं एक साथ जाएं, क्योंकि जिन दुश्मनों से हमारी झलक की लड़ाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। उसे अकेला नहीं छोड़ना है और हर हाल में उसके साथ ही रहना है। आप लोग समझ रहे हैं ना हमारी बात? दादाजी पूरी सीरियस टोन में बोल रहे थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि झलक की सिक्योरिटी को लेकर वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते थे। तभी आदित्य बोला, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है दादाजी, चाहे सामने सिद्धार्थ खुराना हो या कोई और, मैं सब संभाल लूंगा। जैसे ही आदित्य ने ये कहा, एक पल के लिए झलक को उसका अंदाज पसंद आया, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए दादाजी को देखकर बोली, समझ में नहीं आता जो दुश्मन मेरी जिंदगी में है उनको लेकर आपको इतना डर क्यों हो रहा है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद भी संभाल सकती हूँ। ये सुनकर आदित्य ने इम्प्रेसिव नज़रों से झलक की ओर देखा था। तभी अनामिका दादाजी को देखकर बोली, मैंने आपसे कहा ना कि वो लोग इतने भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। हम उन्हें संभाल लेंगे और आप मुझे बिल्कुल भी रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये कुछ दिन जो भी हैं मैं अपनी मर्जी से गुजरने वाली हूँ और इस बीच मुझे बिल्कुल भी किसी की रोक टोक नहीं चाहिए। जैसे ही अनामिका ने ये कहा, दादाजी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। ये देखकर वो पूरी तरह से शांत बैठे थे, क्योंकि वक्त से पहले अकेलेपन और अपने पिता की खोज ने अनामिका को इतना ज़्यादा शार्प और शांत लड़का बना दिया था जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे झलक उसकी ज़िंदगी में आई और अनामिका को उसके सच्चे रिश्ते मिले, तब से वो खुलकर जीने लगी थी। खुलकर बच्चों की तरह बातें भी करती थी। ऐसा लग रहा था कि उसका बचपन अभी तक कहीं गया ही नहीं था। तभी दादाजी ने हंसते हुए कहा, ठीक है भाई आदित्य बेटा, और क्या नाम है इसका, कबीर, जब तुम बच्चे भी यहाँ हो तो हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तुम बच्चों को जहाँ मौज मस्तियाँ करनी है करो, जहाँ फिरना घूमना है सब करो, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो हमें बता देना।
वही कबीर बार बार अनामिका को देखने की कोशिश कर रहा था, मानो वो उससे कहना चाह रहा हो कि थोड़ी देर पहले जो भी बातें हुई थीं, क्या अनामिका अभी भी उससे नाराज़ है? लेकिन अनामिका ने एक बार भी नज़र उठाकर उसकी ओर नहीं देखा था। अब तो कबीर की हैरानी का भी कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसने खुद को शांत बनाए रखा। फिलहाल वही दूसरी ओर झलक ने जल्दी से दादाजी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया था और बोली थी, दादाजी मुझे लगता है कि अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी, मैं कभी किसी को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। उसने अपने बेहद गहरे अंदाज में ये बात कही थी कि कबीर और अभय दोनों के हाथों के रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी अभय तुरंत कबीर के कानों में फुसफुसाते हुए बोला, अरे यार ये सब क्या है, ये थप्पड़ वाली भाभी तो बोल भी इस तरह से रही हैं जैसे उनकी आवाज़ में भी कोई धारदार हथियार छुपा हुआ हो। कितनी ख़तरनाक है न यार उनकी आवाज़। क्या रंग लाएगी झलक की नफ़रत और सिद्धार्थ की गलतफहमी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों और पढ़ते रहिए स्टोरी मढ़िया।